सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अमेरिका के सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, जिसके दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत की है और उनके वरिष्ठ जो सलाहकार है इलॉन मस्क और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन सबके साथ मीटिंग्स किए हैं। कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं दो तरफों में और डिफेंस आउटकम्स जो है उसमें जो F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उसको लेके बातचीत का एक संभावना है और उस पर एग्रीमेंट होना है, उस पर निगोसिएशंस होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बारे में बातचीत की।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है।
दक्षिण एशिया का जो मुद्दे है उसमें बांग्लादेश के बारे में चर्चा हुई है और वैश्विक मुद्दों में यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 2022 के फरवरी से शुरू हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट पर भी बातचीत हुई है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वरण सिंह। प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपका स्वागत है।
धन्यवाद कलोर।
सबसे पहले ये प्रश्न करूंगा कि आपके हिसाब से जो ये विजिट हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का और उनके जो मीटिंग्स हुए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आउटकम्स कौन से हैं और आपको क्या लगता है कि टॉप लेवल की जो बातचीत हुई है इसमें पॉलिटिकल हेड्स के बीच जो इंटरेक्शन के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिला है ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा आने वाले महीनों में?
कलोल, मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की ये अमेरिका यात्रा से इस वक्त ये कही जा सकती है कि इस दूसरे कार्यकाल में उनके चुनावों के भाषण से लेकर लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया और रणनीति इस वक्त काफी आक्रामक होने वाली है और उसको लेकर कई अटकलें आप देख रहे थे, लगाई जा रही थी कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ तनाव आने वाला है, कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। ये बैठक के बाद मुझे लगता है कम से कम वो अटकलें जो है वो जरूर है कि खत्म हो जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि पहली बार इतिहास में हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में नए राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए और उनसे पहले जो तीन इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष वहां गए वो सबसे पहले तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गए, वहां युद्ध की वजह से वहां वो गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इशिबा जापान के वहां गए, जापान उनके साथ मिलिट्री अलायंस पार्टनर है। उसके बाद किंग ऑफ जॉर्डन वहां गए, वो भी सीरिया में जो हालात हैं उसकी वजह से वहां गए। तो ये कहा जा सकता है कि पहले बड़ी शक्ति के राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा हुई अमेरिका में जो भारत के प्रधानमंत्री की हुई और उसमें बहुत सी चीजों को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सोच साझा हुई। कुछ बातों पर उन्होंने कुछ डेडलाइंस भी रख दिया है कि इन तारीख तक ये सब होना चाहिए और कुछ चीजों पर उन्होंने समझ साझा कर ली है। उसका जो नतीजा निकलेगा वो आने वाले महीनों में सामने आएगा। दो बड़ी चीजें आपने रक्षा के उपकरणों का जिक्र किया। मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक है, भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है। तो कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि इस सच्चाई के बावजूद भारत का स्रोत जो है वो हमेशा से सबसे बड़ा रूस रहता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कभी अमेरिका से भी ज्यादा इसराइल पर हम निर्भर करते हैं, कभी फ्रांस पर हम निर्भर करते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप, जिनको व्यापार को घाटे को लेकर हमेशा बड़ी चिंता रहती है और अमेरिका के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि भारत बहुत बड़ा हिस्सेदार हो सकता है रक्षा के उपकरणों को निर्यात करने के लिए अमेरिका के लिए। भारत की नजर दूसरी तरह से है। भारत चाहता है कि हाँ, उपकरण खरीदे जाएंगे पर उसके साथ साथ साझेदारी भी बनेगी, तकनीक का हस्तांतरण होगा, हिस्सेदारी बनेगी नवाकार में, शोध में, उत्पादन के विकास में। तो भारत अपने नजरिए से तालमेल बनाना चाहता है रक्षा की हिस्सेदारी का। ये जरूरत भी आज उभरती हुई शक्ति है भारत, तो आर्थिक यदि व्यवस्था हमारी आगे बढ़ेगी तो सैन्य शक्ति भी बढ़नी चाहिए, और भारत की सेना के पास उपकरण बहुत पुराने हैं, बदलाव की जरूरत है, अति आधुनिक तकनीक की जरूरत है, हमेशा से बात करते हैं। तो एक तो ये था कि भारत जो कुछ दे सकता था, अमेरिका कुछ दे सकता था, ये आपस में तालमेल अच्छा बना। दूसरा व्यापार को लेकर मुद्दा था, उसमें करीब 45 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा है 118 बिलियन डॉलर के व्यापार में। वहां भी अमेरिका का चीन के साथ व्यापार का घाटा जो है वो करीब 300 अरब डॉलर है, हमारा 45 अरब डॉलर है। ठीक उसी तरह से मेक्सिको और कनाडा का भी व्यापार का घाटा है। तो साफ जाहिर है कि ये मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। पर जब भारत फिर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आयातक है ऊर्जा का, और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो फॉसिल फ्यूल्स को, गैस और ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले हैं, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी से हट चुके हैं, उनको लगता नहीं कि वो जरूरत है उनकी, और वो उसको भी निर्यात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चाहते हैं अमेरिका ऊर्जा का निर्यातक नंबर वन बन जाए भारत के लिए। ये गैस और ऑयल की तो बात है, उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी, जो परमाणु शक्ति की, परमाणु ऊर्जा की बात भी है, वहां भी भारत भी हमेशा से सोचता रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम होना चाहिए। तो भारत उभरती हुई शक्ति है, आर्थिक व्यवस्था है, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो भारत दे सकता था। तो टैरिफ्स की बात जो है, वहां भी भारत ने अपना संकेत दिया कि कम करेगा। तो ये जो बैठक हुई उसमें इतने मुद्दों पर बातचीत हुई, तनावर राणा को भेज रहे हैं वो अभी यहाँ, तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा कि इस बैठक के बाद जो अटकलें लग रही थी कि तनाव बनेगा, चुनौतियां बनेगी भारत के लिए, वो खत्म हो जाना चाहिए।
एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के वाशिंगटन डीसी पहुंचने के कुछ घंटा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन रशिया के, इन दोनों के बीच फोन में वार्तालाप हुआ, और दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हमने देखा। जब क्रेमलिन का जो स्टेटमेंट है वो कह सकते हैं कि काफी कंट्रोल्ड स्टेटमेंट रहा है उनका, और वाशिंगटन डीसी से जो स्टेटमेंट आया है उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी डिटेल में बताया कि दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के देश भ्रमण के लिए भी बात की है, और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक तरह की बहुत बड़ी उन्होंने पहल की है। पर बात यह है कि रशिया के साथ भारत का बहुत क्लोज संबंध है, और भारत के साथ रशिया के जो डिफेंस रिलेशन है वो 1971 से हमने देखा है बहुत स्ट्रांग है। पर ऐसे समय में भारत और रूस के बीच जो रिलेशन है, इस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से ऐसे मौके पे जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत को डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा सामग्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेना चाहिए, और उनके लिए वो इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रूस की तरफ से जो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किया जा रहा है उसमें शायद भारत को कटौती करना पड़े इसके चलते?
देखिए, पहली बात तो आपने कही कि वाशिंगटन डीसी से और मॉस्को से, यानी क्रेमलिन और व्हाइट हाउस से जो बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रपति पुतिन से, उसके ब्यौरा जो है वो अलग अलग है। वो हमेशा होता है, किसी भी उदाहरण को ले लें, दोनों तरफ से ब्यौरे में हल्का फुल्का फर्क होता है, कभी फर्क ज्यादा होता है। पर ये अपने आप में अच्छी बात है कि आप देखें, पिछले राष्ट्रपति बाइडेन के दौरान रूस और चीन की नो लिमिट्स पार्टनरशिप बन गई थी, उसका असर भारत चीन के संबंधों में तनाव बढ़ाने में कुछ चिंता का विषय था भारत के लिए। तो अब यदि राष्ट्रपति अलग से फोन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हैं, फिर अलग से फोन पर राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं, तो राष्ट्रपति पुतिन की निर्भरता चीन पर थोड़ी है वो कम हो जाती है, पहली बात तो ये। और चीन का जो आक्रामक रुख भारत के प्रति हो सकता था उसका असर होगा सीधा। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति ट्रंप खुद सीधा राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करना शुरू करते हैं, तो जाहिर है कि जो उनकी तरफ से तनाव, जब दबाव भारत पर बनता था कि आप इतनी दोस्ती क्यों रखते हैं रूस के साथ, वो भी कम होने का उम्मीद कर सकते हैं। कि भारत का जो लगातार निर्भरता है रूस के उपकरणों पर, रक्षा उपकरणों पर, वो उसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव नहीं बनना चाहिए अमेरिका के साथ मिलकर। तीसरी बात ये कि आप देखें कि एक जमाने में करीब 2/3 कुल मिलाकर जो रक्षा उपकरणों का आयात भारत करता था वो केवल रूस से होता था। तो पहले ही एक दशक से ज्यादा उसमें बदलाव आया है, 66% के करीब से कम होकर वो 45-46% तक पहुंच चुका है रूस का हिस्सा। और इन्हीं सालों में भारत ने अपनी रक्षा की हिस्सेदारी फ्रांस के साथ बढ़ाई है, इसराइल के साथ अच्छी बढ़ाई है, अमेरिका के साथ अच्छी तरह से बढ़ाई है। तो वो एक तरह से बदलाव जो लगातार हो रहा था, यहाँ भारत कोशिश कर रहा था कि केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके चलते जाहिर है कि यदि रक्षा की साझेदारी अमेरिका के साथ बढ़ती है तो हमारी जरूरत रूस से उपकरण मंगाने की जाहिर है कि कम हो जाएगी। आपने F-35 अत्याधुनिक जेट है वो, उसका आपने जिक्र किया। उसके अलावा ड्रोन्स की बात हो रही है, सीहॉक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है, और बहुत से दूसरे उपकरण हैं जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उनका भी बात हो रही है कि उनमें किस तरह से भारत को मुहैया करा सकते हैं। और भारत की कोशिश है कि केवल उपकरणों का आयात ना हो, उसके साथ साथ अपनी साझेदारी, हिस्सेदारी नवाकार में, शोध में, उत्पादन के विकास में, हर स्तर पर साझेदारी बननी चाहिए। उसमें भी यदि अमेरिका अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना चाहता है तो भारत से हिस्सेदारी करने से क्या है कि भारत दुनिया का बहुत अच्छा देश है जो बहुत ही कम कीमत पर आधुनिक तकनीक पर काम कर सकता है, शोध कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। तो इस तरह की मुझे लगता है जो हिस्सेदारी बनने वाली है रक्षा के क्षेत्र में वो थोड़ी अलग उसकी रूपरेखा सामने आने वाली है। और ये कह दिया गया कि जो 2005 से शुरू हुआ था, फिर 2015 में दोबारा से बनाया गया था 10 साल के लिए, अब अगले 10 साल के लिए 2035 तक के लिए भी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर मेजर डिफेंस पार्टनर कोऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, उसका रूपरेखा बनाई गई है। और उसका जाहिर है कि असली रूप जो संधि होगी वो सामने आएगा जल्दी ही। तो बहुत अलग तरीके के ये रिश्ते इतने भारत के बनते जा रहे हैं। और ये टैरिफ्स की हम बार बार बात करते हैं, आप देखें जब भी कोई देश विकासशील देश से बदलकर विकसित देश बनने की ओर बढ़ता है तो जाहिर है कि ये टैरिफ्स में बदलाव आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कब आएगा, कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो जाहिर है कि जैसे दुनिया को लगेगा कि विकास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है भारत में तो वो चाहेंगे कि भारत का बाजार खोल दिया जाए। उनके लिए भारत को सोचना होगा कि कब वो उस तरह का बिल्कुल जो एक्सेस देना है बाजार को, कैसे देगा, किन शर्तों पर देगा। उसमें कोई नई बात नहीं है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने टैरिफ्स को कम करें, अमेरिका के उत्पादन को आयात करें। वो तालमेल लगातार बनता रहेगा आपस में, हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी पर उनको सुलझाया भी जाएगा। तो यही मुझे लगता है इस बैठक से जो संकेत मिलता है वो भाषा देख लें, कितना उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिया भारत के प्रधानमंत्री को, या बॉडी लैंग्वेज देखें, या जो निर्णय लिए गए हैं जिनको संकेत दिया गया जिनकी तरफ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें लगता है कि दोनों देश एक दूसरे पर जाहिर है कि निर्भर होकर अपने अपने राष्ट्रहितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है।
एक मुद्दा ये है कि भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका तो डेवलप्ड इकोनॉमी है। जब एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग इकोनॉमी में समानता नहीं हो सकती है, फिर भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं और कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, ये क्या ये सही है प्रोफेसर सिंह, आपको क्या लगता है?
कलोल, आप देखें शुरू से ही हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो भाषा है उसमें बहुत सी चीजें वो कहते हैं जो कि रणनीति का हिस्सा है कि मैक्सिमम प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत दबाव कैसे किया जाए दूसरी देश के नेताओं के प्रति, ताकि फिर वो अपने राष्ट्रहितों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे से उनसे डील बना सके किसी तरह से। जैसे उन्होंने कहा कि वो नंबर वन बनना चाहते हैं निर्यातक गैस का, ऑयल का भारत के लिए, तो जाहिर है उनमें उनको देश को तो फायदा होगा भी, पर उनको लगता है कि इससे भारत की निर्भरता जो ईरान पर है वो भी कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह से वो हथियार देना चाहते हैं ताकि रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो उनका रुझान शुरू से ही यही रहा है, उनको लगता भी है शुरू से, बार बार उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के देश हैं वो फायदा उठाते हैं अमेरिका का। आपने बात सही कही, वो विकासशील देश नहीं है, वो विकसित देश है, भारत विकासशील देश है, तो बराबरी नहीं हो सकती वो रेसिप्रोसिटी में। पर उनको ये हमेशा लगता रहा है कि लोग फायदा उठाते हैं, और उन्होंने लगातार सोचा कि तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगाकर और टैरिफ्स बढ़ाकर वो दबाव बनाएंगे ताकि अपनी शर्तों को मनवा सकें। उनका कोशिश यही है कि केवल भारत उनको किस तरह से योगदान कर सकता है अमेरिका की अपनी समृद्धि, संतुलन, शांति, व्यवस्था, सुरक्षा बनाने में कैसे सहायक हो सकता है भारत, वो उस नजर से उसको देखते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि बराबरी वो करेंगे, जितना भारत टैरिफ लगाएगा उतना वो टैरिफ लगाएंगे। तो बहुत सी चीजें कहने के लिए होती हैं ताकि दबाव बनाया जाए, अपनी शर्तों को मनवाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, मैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात करता हूं, तो दोनों के राष्ट्रहितों का तालमेल कैसे होना है उस पर हम बैठकर बातचीत करेंगे। और जाहिर है कि बातचीत हुई, और जैसा मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज से या लैंग्वेज से जो नजर आता है वो ये है कि तालमेल हुआ आपस में अच्छा उनका और हिस्सेदारी बनेगी आगे।
प्रोफेसर सिंह, आपने सुर्खियों में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका के सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और पत्रकार कल्लूल भट्टाचार्य जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में